अच्छे कार्यों का संस्कार भी डालें। बुरे कार्यों को छोड़ने के लिए अच्छा संस्कार, हम बुरे आचरण को छोड़ने के लिए अच्छे आचरण का संस्कार डालते हैं। उस अच्छे आचरण के संस्कार को अपने सिद्धांत की भाषा में व्यवहार सम्यक दर्शन प्रस समिति गुप्ति इत्यादि रूप जो हम बाह्य आचरण अंगीकार करते हैं वो सब हमारा बाह्य चारित्र है या उसी को व्यवहार चारित्र कहते हैं। और इस व्यवहार चारित्र के होने पर ही काहे के लिए किया है तो कहते अंतरंग चारित्र की उपलब्धि के लिए कषायों के समाप्त करने के लिए राग द्वेष निवृत्ति राग द्वेष की निवृत्ति के लिए हमने उस अंतरंग चारित्र को प्राप्त करने के लिए ये बाह्य चारित्र बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसा लगता है कि इस बाह्य आचरण से क्या होने वाला है, ये तो कोई मिथ्या दृष्टि जीव भी कर सकता है। तो भाई ठीक बात है, बाह्य आचरण तो मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, लेकिन उसको उससे कितना लाभ होगा? तो कहते उसको उससे पुण्य का अर्जन तो होगा, क्योंकि मन वचन काय की क्रिया उसकी भले ही बाह्य में अच्छी है, उसको पुण्य का अर्जन तो होगा। और उसके पुण्य के अर्जन से उसको इतना तो होगा कि फिर सुगति मिलेगी, और सुगति पाकर के वो अपना निमित्त बनाना चाहे तो वैसे उसको निमित्त भी जुट जाएंगे, इतना तो उसको भी लाभ। और अगर संग सम्यक दृष्टि हो गए तो फिर लाभ ही लाभ है, यदि पुण्य के अर्जन के साथ में वो कर्मों की निद्रा भी करता है। ऐसा विचार करके बाह्य आचरण जो है वो अंगीकार करवाने की बात कही, अंगीकार करने की बात कही। कहीं कहीं पर ऐसी बात अपने मन में आ जाती है तो उसका भी अपन को समाधान ढूंढ लेना चाहिए कि क्यों ऐसा कह रहे हैं बाह्य आचरण को। जब कोई बाह्य आचरण अंगीकार कर लेता तब उसको कहते कि भैया इसी में लगे रहोगे, राग द्वेष कमती कर ले, गिला ने लिया था और तुम्हारा राग द्वेष तो कमती हुआ नहीं, आलू तो छोड़ गए तुमने, मर्द बहुत हो तुम, कषाय बहुत करते हो, तुमने जो छोड़ा काहे के लिया था। हम ये नहीं कह रहे कि तुम चूंकि कषाय करते इसे अब तुम आलू फिर से खाने लगो, क्या कषाय तो करते इसने आलू खाने में क्या दिक्कत है, ये नहीं कह रहे। नहीं, तुम्हारी कषाय कमती नहीं हुई वो भी होना चाहिए कि वही आचरण छोड़ने की नहीं, वही आचरण तो अंगीकार करवा दिया, फिर धीरे से कान पकड़ते कि इतने ही मत अटक जाओ। जो इस व्यवहार चारित्र को ही मोक्ष मार्ग मान करके बैठ जाता उसके लिए कहते कि आगे बढ़ो, उसके लिए नहीं कह रहे हैं जिसने अभी अशुभ प्रवृत्ति छोड़ी नहीं। मैं तो जो है पढ़ता था तो उसमें लिखा कि बहुरी वो तपश्चरण को व्यथा क्लेश ठहरावे है। टोगरवर्जी लिखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है कहता है कि तपश्चरण इत्यादि जो वायु आचरण है वो तो क्लेश रूप है, उससे क्या होने वाला है, हाथ की चीज जो छुड़वाएंगे, जो इंद्री सुख देवे तो सुख छुड़वाए गए, वो कौन सा सुख मिल जाने वाला, जो अभी सुख नहीं दे सकत वो बाद में क्या सुख देगा, अभी सुख देवे जो चीज। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो देह के लिए उपकारी है तो उससे आत्मा का उपकार नहीं होता, और जिससे आत्मा का उपकार होता है उससे देह का नहीं होता। ऐसी तुम्हारी अगर श्रद्धा हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर तो तुम लौकिक जनों की तरह हो। ये तो लौकिक व्यक्ति मानता है कि देह सुखी हो गए तो हमारी आत्मा सुखी हुई है और हमें देह का ही उपाय सारा कुछ करना है, वो आत्मा के सुख को देह का सुख ही मान करके चलता है। कहते कि अगर हम तपश्चरण और वाही आचरण को क्लेश मानेंगे तो क्या कहते, तो हम पूछते हैं कि अनशन आदि करने से द्वेष भया, तभी तो ताको क्लेश माने, आपको जो अनशन इत्यादि तप से उनमें आपको द्वेष हुआ है इसलिए आपको क्लेश पहुंचा, तब तो फिर यहू क्लेश भया, तब भोजन करना सुख स्वयं ठहराया, तब इसका मतलब है आपको और भोजन इत्यादि में बहुत आनंद राग हो रहा, उसमें द्वेष है भोजन न करने में और भोजन करने में राग है, कहां राग आया तो ऐसी परिणति तो संसारी जीवन के बाह्य है, तो तू मोक्ष मार्गी कैसे गया। इसका मतलब है आप मोक्ष मार्गी नहीं हो, अगर आपको तपश्चरण में क्लेश मालूम पड़ता है, बाह्य आचरण करने में आपको क्लेश मालूम पड़ता है, तो फिर इसका मतलब है कि जो अनर्गल प्रवृत्ति है भोजन इत्यादि के प्रति आपका राग तो हुआ ही, और राग हुआ तो फिर ये तो आपका संसार ही है कि एक से राग है एक से द्वेष है, तो ये मोक्ष मार्ग का लक्षण तो नहीं है। ऐसा आसानी से अगर अपन समझना चाहें तो समझने के लिए अपने लिए उपाय बहुत हैं। एक और कहते कि बहुरी कहे कि शास्त्र विषय तो ऐसा कहा है कि तप आदि का क्लेश करेंगे तो करो, ज्ञान के बिना सिद्धि नहीं, तो भैया पहले ज्ञान प्राप्त कर लो। तो कहते ताका उत्तर यहू के दीजिए, तब तो ज्ञान थे तो परानमुख है और तभी थे मोक्ष मांगे है, तिनको ऐसा उपदेश दिया है जो तत्व ज्ञान करते नहीं और कहते कि अकेले वाही आचरण से मोक्ष हो जाएगा, उनके लिए कह रहे कि वाही आचरण से कुछ नहीं। है कि तप इत्यादि करने से क्या होने वाला, ये तो सब बाहरी क्रिया है, जड़ की क्रिया है, शरीर की है, इस ये शरीर की आश्रित है। तो कहते कि ऐसा नहीं है, निरोध अगर कोई निषेध करे तो वो स्पष्ट लिखते हैं कि प्रतादि का निषेध करना इसका अर्थ है कि मोक्ष मार्ग से विपरीत जाना। ये हमें इस अध्याय की शुरुआत में, जबकि हम चारित्र की बात कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हमारे मन में आ सकती हैं, सुन करके भी आ सकती हैं भैया, पढ़ करके भी, ठीक ठीक अर्थ ना समझ में आने की वजह से भी आ जाती, अज्ञान की वजह से होता है, और या फिर अपने मोह की वजह से। चीजों के प्रति हमारा राग होने से हम उन चीजों के बुरे होने पर भी उनको छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमारा राग है, वे हमारे लिए दुखदायी है। आसक्ति के लिए वर्णी जी से पूछो कि आसक्ति कौन सी चीज का नाम है, तो कहती आसक्ति तो ऐसी कहानी कि बिल्ली है और उसने अगर दूध की वोंगनिया में वो मुंह लगा लिया, अब पीछे से तुम डंडा मारो तो नहीं हटने वाले। जी आसक्ति जलाती के विपत्ति सामने दिखाई पड़ रही पर छोड़ा नहीं जा रहा। सो बिल्ली की बात तो समझ में आती है, मनो अपनी ही समझ में आती कि हमें मालूम है कि ये सब विषय भोग की सामग्री जितनी जितनी हम बढ़ाते जाएंगे, जितनी इसमें हमारी आसक्ति होती जाएगी, उतना हमारा अहित होने वाला है। ये जानते हुए भी उसको छोड़ नहीं पाते, जरा सी छोड़ते हैं और उससे दूनी और ग्रहण कर लेते, एक चीज छोड़ते हैं दूसरी चार चीजें और उसके साथ रख लेते। आने वाला है पर्यूषण, तो यह सावधानी रखना इसमें कि एक चीज छोड़ के चार और चीजें नई नई जुड़ जा रहे, और ऐसा ही होता है अपन के साथ में। इसलिए बाहर देखने वाला कहता गरीब इनकी गृहता तो छूटी नहीं, इनने जो है ठीक है सब्जी को त्याग करे हैं, सो वे नहीं खाए का केला नहीं खाए, केला नहीं खाया मैंने चिप्स तो खाई केला की, तो क्या मतलब हुआ? ठीक है गीली चीज में ज्यादा हिंसा हम भी मानते हैं, उस सूखी में कम पी है, पर आपकी आसक्ति इंद्री संयम तो नहीं रहा, आपने भिंडी सीधी सीधी नहीं खाई, सूखी धरी थी कचरियां धनी थी सुबह बना के खा ली, इससे क्या झलकता है? और अबे कल तक तो एक आइटम बनता था, अब क्योंकि व्रत लगे हुए हैं ठीक से एक आसन करना है, सो चार आइटम और ज्यादा अपने मन के बना लिए, उनके साथ में दो रोटी ज्यादा रुचि से खा सकते। ऐसा अगर हमारे मन में, हम इसलिए नहीं कह रहे कि अपन क्यों ऐसा करते जी, इससे हमारा राग भाव झलकता है। चारित्र क्या चीज है? चारित्र हमारे उस राग और द्वेष को कम करने वाली चीज है, ऐसा हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। उससे क्या होगा, दूसरा भी देखेगा कि देखो इन्होंने जो है बाह्य चारित्र भले ही अंगीकार किया, लेकिन देखो इनका अंतरंग में राग द्वेष तो कमती हुआ है, इनकी आसक्ति कमती हुई, और अपने को भी आनंद तभी आएगा जब अपनी आसक्ति कम होगी, नहीं तो पूजा करत करत जो ख्याल आ जावे कह रहे अब चलो चल रहे हैं चार चीजें अब ज्यादा बनाऊने हैं, सो जल्दी कर लो, और दस तो कन्या पूजा भी दस कर ले है पूरी और जल्दी जल्दी कर लो, तो इससे अपनी हानि होती, इससे अपने को जो आनंद मिलना चाहिए वो आनंद नहीं मिलता, और दूसरे देखने वाले को भी जो है बड़ा कंट्राडिक्शन मालूम पड़ता है कि ये तो दोहरा जीवन जी रहे हैं, एक तरफ जो है आसक्ति छूटती नहीं, दूसरे तरफ जो है त्यागी कहलवाने का इनको अपना क्या कहें मन में है कि हमें कोई त्यागी भी कहे कि हमने एक आसन भी किया था और आसक्ति तो एक आसन में इतनी हो गई। तो ऐसा इन भावों को अपने को विचार करना चाहिए कि बाह्य आचरण अगर अपने अंगीकार किया है तो काहे के लिए अंगीकार किया है, इसके लिए किया, और पाप तो पांच पाप तो कारी है, उसका कारण क्या है? उसका कारण तो कषाय है, लोभ से शुरुआत होती है। कषायों में भी अपन क्रोध को, कोई क्रोधी हो गए तो बहुत जल्दी उसको उसकी निंदा करते कह रही है बहुत गुस्से रहे बहुत गुस्सा कर बहुत जल्दी नाराज हो जाते, उनकी नाराजगी दिखाई पड़ती लेकिन किसी का लोभ दिखाई नहीं पड़ता, और सबसे ज्यादा खतरनाक है लोभ। जब हमें किसी चीज के प्रति लोभ जागृत होता है तो उसको पाने की इच्छा होती है, और पाने के लिए हम दांव पेंच करते क्योंकि सीधे सीधे नहीं मिलेगी, इसलिए मायाचारी करते, और मायाचारी प्रकट हो जावे तो हमारे अहंकार पे चोट पड़ती है, हमारा मान जो है सिर उठाता है और फौरन हमें क्रोध आ जाता है। क्रोध तो बहुत बाद में आया, पहले शुरुआत तो वही है लोभ से, और इसलिए लिखना पड़ा कि लोभ पाप का पाप पकाना। अपन पांच पापों के त्याग की बात करते हैं तो पांच पापों के त्याग के लिए पहले तो आवश्यक है कि लोभ का त्याग करो। लोभ के त्याग का मतलब क्या है, कहीं ऐसी चीज थोड़ी है कि उठा करके जो लोभ हतो सुनने फेंक दो, संतोष धारण करो, जितनी चीज मिल गई है उसमें संतुष्ट हो। साधु और श्रावक के जीवन के लिए दो ही बातें अगर जैन दर्शन में विशेष कहीं तो श्रावक को संतोष और साधु को समता, मिले न मिले दोनों में समता है, और यहाँ तो मिल जाने पर संतोष है, न मिलने का संतोष कमती है, मिल जाने का संतोष ज्यादा है। अगर ये हो जावे, मिल जाने का संतोष हमें बहुत हो जावे, तो न मिलने का असंतोष उतना नहीं सहलेगा। लेकिन हमें मुश्किल ये है कि मिलने का संतोष नहीं होता कि दो हाथ मिले, दो पांव मिले, आंख मिली, जो उनकी आंख ने हो की हालत हो, तो ये अपन को संतोष रखना चाहिए, आंख तो मिली। ऐसा अगर विचार आ जावे तो असंतोष हमारे जीवन में से कम होगा, और असंतोष कम होगा तो ये भाग दौड़ जो है, जो अपन संसार की प्रपंच है वो सारा अगर सुबह से शाम तक का है तो असंतोष की वजह से है। क्योंकि हमें अपने जीवन में संतोष पाने के लिए लगता है कि जी इतनी इतनी चीजें हो जाएंगी तो जीवन बहुत अच्छा रहेगा, घर नहीं है तो घर हो जाएगा, और अच्छा नहीं है तो और अच्छा हो जाएगा, और जो साधन है सुख सुविधा के दे हो जाएंगे तो सुख मिल जाएगा। अगर सब सुख के साधन जुटाने से सुख मिलता होता भैया तब तो फिर बहुत अच्छा था सबके लिए, अभी तक वो सुख प्राप्त हो जाता। क्योंकि साधन तो कई कई बार अपन ने जुटा करके देख लिए, इसलिए कहते कि उन साधनों को ज्यादा नहीं जुटाओ, उन साधनों का त्याग करो, उन साधनों के त्याग करने से ज्यादा आनंद आएगा, उनको जोड़ने से ज्यादा आनंद। त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक ही भोग करो। अगर भोग उपभोग की सामग्री रख रखी है तो उनके पीछे त्याग भी होना चाहिए। त्याग संतोष से आता है, या कि त्याग से संतोष प्रकट होगा, शांति उसी त्याग से मिलने वाली, उसी की चर्चा। श्रावक के लिए कितना त्याग कर देना चाहिए, पांच पापों का एक देश त्याग करे तो वो श्रावक है, और पूरी तरह से त्याग कर दे वे अंतरंग बहिरंग परिग्रह का तो वो महाव्रती है, उसको मुनि कहते अपन साधु मानते हैं। ये दोनों प्रकार के चारित्र की यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमें व्यवहार चारित्र को हीन जान करके छोड़ नहीं देना चाहिए। व्यवहार चारित्र भी हमें उस निश्चय चारित्र की प्राप्ति के लिए कार्य कारणभूत है, इसलिए उसको तो अंगीकार करना ही चाहिए, पर अपना ध्यान उस तरफ लगा करके रखना चाहिए कि हमें क्या चीज प्राप्त करनी है। तत्व ज्ञान पूर्वक हमने अगर व्रत अंगीकार नहीं किए तो वो तत्व ज्ञान किस काम का है। हमने कल भी आपसे कहा था कि ज्ञान का वृक्ष है, और उसमें अगर आचरण के फल नहीं लगे तो उस वृक्ष की क्या कीमत है। ऐसा हमें विचार करना चाहिए, और अपने पापों से मुक्ति के लिए उपाय करना चाहिए। पाप से मुक्ति का एक ही उपाय है कि कषाय न करो, और कषाय में लोभ न करो, संतोष धारण करो। संतोष कैसी चीज है आपको आइडिया तो होगा। एक दो व्यक्ति जो है आपस में बात करते थे, उनका बेटा जो है वो सुन रहा था, तो आपस में बात कर रहे थे। उसमें से एक उनका उस बेटे का पिता भी था, तो वो पिता अपने मित्र से कह रहा था कि देखो आज हमें जो है 5,000 रुपए का घाटा हो गया। तो वो बेटा बहुत मुश्किल में पड़ा कि पिताजी जो है अपने मित्र से अंकल जी से जो है झूठ बोल रहे हैं, नेट 5,000 रुपए का आज प्रॉफिट हुआ है और कह रहे हैं कि 5,000 का। तो उसने बोल दिया, उससे रहा नहीं गया, वो तो सीधा सच्चा सरल था। तो उसने कहा कि अंकल पापा जो है बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, 5,000 रुपए का नेट बेनिफिट हुआ है, तो लाभ हुआ है। बोले तू चुप रहा। मित्र से बोला कि मैंने सोचा था कि यार 10,000 रुपए का लाभ होगा, हुआ तो 5 ही का है, 5 की तो हानि हुई है, तो वो 5 की हानि ज्यादा दिख रही, हानि जबकि हुई नहीं है। 10 का सोचा था सो 5 मिले हैं, उन 5 का संतोष उतना नहीं है, जो 5 नहीं मिल पाए उनका असंतोष ज्यादा। ये कहलाता संतोष और असंतोष। जैसा आपका एटीट्यूड होगा, आधा गिलास भरा है और आधा खाली है, आप जिस दृष्टि से देखना चाहें, आधे भरे का सुख लेना चाहें तो आधे भरे का सुख ले सकते, और आधे खाली के लिए परेशान होना चाहें तो परेशान हो सकते हैं। दोनों बातें हमारे अपने लोभ के ऊपर निर्भर करता है, हमारे अपने एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के सोच वाले हैं। सुकरात के जीवन में इस तरह की कई घटनाएं आती थी, उनकी जीवन साथी उनका उत्तर सहयोग नहीं देती थी, उल्टी ही चलती थी। तो वो कहते थे कि बहुत अच्छा है, इसकी वजह से हमें बहुत बातें अच्छी सीखने मिल जाती। ऐसा हुआ कि भजन वो मैं लगे हुए थे, बहुत भजन कर रहे थे और बज गए दो। भीतर से मैं आवाज दी होगी कि थोड़ी चाय वगैरह ले आओ, तो वो चाय लेकर के आई होगी, ये लोग भजन में लगे थे, इनने ध्यान नहीं दिया। तो दूसरी बार जैसे ही कहा कि चाय आई क्या, तो उसने कहा जी तो धरी है, और उठा करके जो है पूरी उनके सिर पर से उड़ेल दी गुस्सा में आकर के, दो बज गए हम जब से जो है वेट कर रहे हैं उसका। वो उसकी आदत थी वैसी, और जैसे ही उनके सिर पर उड़ेली तो एक तरफ से बह करके और गरम गरम थी, तो एक तरफ का चेहरा जो है झुलस गया। जितनी मित्र मंत्री बैठी थी वो तो घबरा गई, मगर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों की क्यों थी। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई फिर भी आप मुस्कुराते हो, क्या ले जाता हूँ, आधो बच गाओ आधो जल पाओ, हम तो ये देख रहे थे। आधा ही चला है, बहुत बहुत बन जाए जल गई कि आधा बच गया है, आधा जलने का कोई दुख नहीं है, आधा और जल सकता था पर आधा बच गया है। ये आपके हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। चीजें होने पर हम संतोष भी प्राप्त कर सकते हैं और सब चीजें धरी रहे और एक आध चीज कमती हो गए तो उसका संतोष का उन सब चीजों के होने को भी व्यर्थ कर देता है। इसलिए लोभ पहले जीतने की आवश्यकता है, लोभ से ही इन सारे पांचों पापों की उत्पत्ति होती है। ये मान करके अपन चले पांच पाप कौन से हैं तो बताने की हमारे ख्याल से तो किसी को छोटे लड़के को भी मालूम होगा कि पांच पाप कौन से, करने वाले को भी मालूम है हमारे ख्याल से, न करने वाले से तो करने वाले को ज्यादा मालूम है कि पाप कौन से, झूठ बोलने वाले को मालूम कि सच्चाई क्या है, सच बोलने वाले को इतना हिसाब किताब नहीं, वो तो कहता हमने तो बोला जो हो सकता था वो बोला, लेकिन झूठ बोलने वाले को मालूम कि सच्चाई क्या है, इसलिए तो झूठ बोलता उसके बिना नहीं बोल सकता। चोर जानता है कि साहूकारी क्या चीज कहलाती है। हम तो इसको इस तरह से अगर देखें तो देख सकते हैं। पाप के बारे में हम बता दें उतना शायद हम नहीं जानते होंगे, पाप के कितने रस्ते हो सकते हैं, पाप के कितने ढंग हो सकते हैं, ये सब आप जानते हैं, क्योंकि जो कुछ भी छुपा के करना पड़े वो सब पहले नंबर वो सब पाप है, और जिसमें भी दुराव छिपाव की भावना आ गई है वो तो पाप है ही। आप क्या करते हैं दिन भर में, जानते हैं एक चोरी करने वाला चोर भी जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो पुण्य को अच्छा मानता है, इसके बावजूद भी उसको छोड़ने, किसी से भी पापी व्यक्ति से भी पूछ लो कि पाप अच्छी चीज है, कहता नहीं पाप अच्छी चीज नहीं। तो पांच पाप जो है, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, खुशी है, परिग्रह है, ये पांच पाप है। और शुरुआत किससे होती सबसे अधिक, हमने कल भी पिछले दिनों भी कहा था कि परिग्रह की अगर सीमा नहीं है और आकांक्षा अनंत है तो वो सब पाप करवाएगी। पूरे पापों की जड़ अगर है तो वो परिग्रह है, हमारी जो मूर्छा है, हमारी जो आसक्ति है वो उसके लिए कारण है। परिग्रह का अर्थ आपको कभी अपन आगे पढ़ेंगे, परिग्रह का सीधा इतना सा अर्थ नहीं रहना कि चीजें इकट्ठी आपने कर ली हैं और बहुत आपके पास में है इसलिए आप परिग्रही हैं, इतना सीधा सा अर्थ नहीं है। आपकी उसमें मूर्छा कितनी है, आप उसमें कितनी अपनी मालकियत आरोपित करते हैं इस बात पर निर्भर करता है। अभी हम लोग सुबह से चर्चा कर रहे थे कि पजेसिवनेस नहीं, हम हमेशा कहा करते थे पिछले दिनों भी शायद कहा होगा पजेसिवनेस नहीं, पजेसिवनेस तो कई लोगों की होती है लेकिन ऑनरशिप, और इसलिए तो ट्रस्टी ट्रस्ट बनाना पड़ा, ट्रस्टीशिप सार्वजनिक सबका है भैया, हमारा अपना व्यक्तिगत नहीं है, इसलिए उसके प्रति उतनी मूर्छा नहीं रहेगी। और अगर ऑनरशिप है, हमने अपना मान के उसको रखा है तो उसमें मूर्छा बहुत है, और फिर थोड़ा बहुत भी कमती हो जावे तो तकलीफ है, थोड़ा बढ़ जावे तो राग है, दोनों में कमती हो जावे तो तकलीफ, बढ़ जावे तो तकलीफ, मगर वो तकलीफ अच्छी मालूम पड़ती है। इसी को रोद्र ध्यान कहते हैं कि चार पैसा बढ़ जावे तो भीतर भीतर जो गुदगुदाहट लगती है, भीतर भीतर जो हर्ष होता है, हाँ उसको शब्द वही है कि जो भीतर अच्छा लगता, कौन होगा इसमें बताओ हाथ उठाए कोई व्यक्ति, क्या हमें चार पैसा ज्यादा बढ़ जाता कार्य हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, बहुत बिरला होगा जो कहेगा कि बढ़े तो और घटे तो हमें इससे कोई लेना देना ना ज्यादा नहीं, वरना सामान्य व्यक्ति तो बढ़ने पर हर्षित होता है, परिग्रह में आनंद मानता है, और परिग्रह में आनंद अगर आपको आने लगा तो फिर तो आपसे सब पाप हो जाएंगे, कोई करवाएगा नहीं आपसे, हम अपने आप करेंगे। इसलिए पहले नंबर जो है इस चीज को अपने को ध्यान में रखना चाहिए, परिग्रह त्याग के लिए तो मन बनाना, सीमा करने के लिए तो मन बनाना ही चाहिए, मैं सोचता हूँ कि वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। आप अहिंसा का पालन कर सकते, प्रीति बजा के आप चल सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप सच भी बोल सकते हैं एक बार, आप चोरी भी छोड़ सकते हैं एक बार, कब छोड़ सकते हैं सब चीजें कब कर सकते, जब आपकी आसक्ति चीजों के प्रति कम हो गए तब कर सकते, अन्यथा नहीं कर सकते, बाहर कर सकते, भीतर में तो आप कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट, वो कहते ना कि चोर जो है चोरी छोड़ देवे लेकिन हीरा फीरी नहीं छोड़े, वो कुछ ना कुछ जो है वो करते ही रहेगा। इसी तरह हमारा मन भी जो है कुछ ना कुछ खटपट करता रहेगा, अगर वायु में उसने ये जो वास्तव में लोभ है उसको नहीं छोड़ा अगर, तो अपन रास्ते में निकलते हैं कई चीजें देखते हैं और कितनी जल्दी चीजें हमें प्रभावित कर देती हैं, ये मेरी होती, हर चीज के बारे में हजारों प्रकार की चीजें हम तो आजकल सुनते हैं कि दुकान पे जाता है व्यक्ति सोच के कछू जा तो खरीद के कछू ले आए, कैसे हो गया ये कि उस चीज का आकर्षण वो चीज ऐसे व्यक्ति के जाए तो ले लो, ये तो बहुत अच्छी चीज है, बजट भले ही ना हो पॉकेट में उसके पैसे भले ही ना, वो आसक्ति वो लोग जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा भटकाने वाला है। पांच पाप बनने कल पढ़ लिए, पाप प्रणाली का जो पाप की प्रणाली है, ये पाप की नालियां हैं, इनके द्वारा जो है से सुन रहे हैं, और अगर अभी जो है मन में किसी आपके पंचेंद्रिय के विषय की बात ख्याल में आ जाए तो कितनी देर बैठोगे? सोचो मैं जल्दी से खत्म हो जाते, सोच जाके वो भी बन गई है वे बनाते रहते का बनाते हो बाहर मैं तो नहीं मालूम कि क्या बनाता हूँ, निकलते रोज है लेकिन बहुत विशेष है उसका तो बन गई है, अब चलो अब चलते जो जल्दी छूट जाते हो तो खा लो। ऐसी आसक्ति जो है अगर मन में है तो इतना संयम अगर नहीं होगा तो क्या होगा उससे, तो फिर तत्व ज्ञान के योग हमारे लिए मौका ही नहीं मिल पाएगा। अगर हमारी विषयों में बहुत आसक्ति, विषय की आसक्ति तो छोड़नी पड़ेगी तब तत्व ज्ञान होगा, और तत्व ज्ञान हो जावे और फिर भी आसक्ति बनी रहे तो ऐसा दो दो बातें नहीं होती। कम करने के लिए पापों का तो त्याग करता ही करता है जी, ऐसा विचार करना चाहिए। और जड़ काटना चाहिए पहले, जो जड़ है ऊपर ऊपर पत्ते पत्ते जो है खोदने से कुछ नहीं होने वाला। एक व्यक्ति था तो उसके यहाँ पर उसने बहुत तो बढ़िया पेड़ लगाया बड़ा हो गया, खूब सेवा करता था वो। एक बार उसने देखा कि उस पर जब पेड़ बड़ा हो गया हरा भरा तो पक्षी आकर के बैठे, और पक्षी नहीं बैठे एक भूरा रंग का एक पक्षी आकर के बैठा और उसने उसमें चोंच मारी, उसमें जो फल लगा हुआ था उसमें चोंच मारी से वो तुरंत जो है छटपटाया और नीचे गिर गया। उसको लगा की बात क्या है, आयु आ गई होगी उसकी इसलिए जो है मर गया। एक दिन जो है पड़ोसी का लड़का आया, उसने भी जो है बहुत सुंदर फल लगे है ऐसा देख करके मुझे नीचे डरा था, उसको खाया तो वो मर गया। अब जब वो मर गया तब तो इसको लगा कि हो ना हो ये जो वृक्ष मैंने सींचा है तगड़ा लगाया है विष को लगते हैं, ये तो विष का वृक्ष है, इसमें तो फल विषाणी है, अब क्या करें। पड़ोसी का लड़का मर गया, तो कल के दिन अगर अपने ही बेटे ने खा लिया तो वो भी मर जाएगा, जो खाएगा वो मरेगा, ये तो मेरे आंगन में रहने नहीं चाहिए। सो उसने उसके सब डाले वाले जो है बात करके और एक भी बिल्कुल नीचे से उसको काट दिया और फेंक दिया। अब महीने भर के बाद फिर उसने से टीका फूटा और फिर वो फिर बढ़ने लगा, उसने फिर काट दिया। एक भला आदमी जो बाजू में रहता था वो देखता था कि ऐसा करता है, थोड़ा बहुत काट देता। उसने आकर के एक दिन कहा कि भैया अगर इसको अपने आंगन से हटाना चाहते तो मैं जड़ के उखाड़ कर फेंको इसको, और जब तक इसकी जड़ तुम्हारे आंगन में है तब तक तुम इसको कितना ही बाहर बाहर से और तोड़ करके फेंकोगे तब भी कोई काम नहीं बनने वाला है। इसी तरह हमारे जीवन में भी है कि हम जड़ के हमारी कषायों पाप की जड़ है, हम पहले अपने कषायों को जो है विचार करें कि मेरे से पाप ना हो। हर व्यक्ति सोचता पाप नहीं हो, लेकिन भीतर में लोभ बैठा हुआ है, मायाचारी बैठी है, मान बैठा है, क्रोध बैठा है, वो जो न करा ले सो कमती है। सारे पाप करवाते हैं तो हमारी कषाएं करवाती है, वो कषायों को जीतने का उपाय क्या है, क्योंकि भीतर क्या अभ्यास करो कषायों की मंदता के लिए। जानो इस बात को कि ये जो शरीर है और मेरा आत्मा है ये दोनों जो है पृथक पृथक है, मैं इसी की सेवा में जुटा रहता हूँ, इसी की वजह से सारी कषाएं करता हूँ। मेरा आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है, उस स्वभाव की तरफ दृष्टि चली जा रही है। एक उपाय तो ये है, या फिर जो विभाव है उसको विभाव समझ करके छोड़ने का मन बन जावे तो काम अपना दोनों बन जाए। स्वभाव की दृष्टि जिसकी है वो विभाव से बच जाएगा, और विभाव छोड़ने की जिसकी दृष्टि है वो स्वभाव की तरफ पहुंच जाएगा। ये भी बहुत, मैंने जिसको विमोचन कहते ना, प्ररूपण करने वाले के ऊपर निर्भर करता है, जैसी उसको प्ररूपण कर देवे। अब दो ही बातें हैं, एक व्यक्ति ऐसा कह सकता है तो स्वभाव की तरफ दृष्टि दो तो ये सब चीजें अपने आप छूट जाए। अब स्वभाव की तरफ दृष्टि दो ऐसा कहना तो बहुत आसान है, मनो अपना में विभाव और स्वभाव पता ही नहीं है कि क्या स्वभाव है और क्या विभाव है। अनुभव तो सारा विभाव का, अनुभव तो सारा संसार का है, और हम बात करें जो है कि उस संसार से जो स्वाभाविक स्थिति उसकी बात करें तो बात तो कर सकते, मगर अनुभव किस चीज का है। इसलिए कहते कि पहले तो जिस चीज का अनुभव है और जो हमारी नहीं है इसको समझ के उससे छोड़ो। राग द्वेष कम करने के लिए हमें वायु में जो राग द्वेष के कारण है उनको न अध्योसानी बंधु ना, नहीं अध्योसान के द्वारा ही बंद होते हैं, वस्तु के द्वारा बंद नहीं होता, लेकिन अध्योसान किससे होते हैं वो तो वस्तु से ही होते हैं। तो पहले वस्तु को छोड़ो ताकि उसके माध्यम से होने वाला जो राग द्वेष रूप परिणाम है अध्योसान है वो छूटेगा, तब जाकर के अपने स्वभाव की तरफ दृष्टि होगी। प्रभुपण पर निर्भर है, स्वभाव की तरफ दृष्टि होवे तो विभाव परिणति छूटे, और विभाव परिणति छोड़ने का विचार होवे तो फिर थोड़ा सा स्वभाव की तरफ जाना होगा। इस मोक्ष मार्ग में अंगीकार किए जा सकते हैं व्रत नियम, एक तो पूरी तरह से, एक आंशिक रूप से। उसी के लिए श्लोक कहते अपन इसको पढ़े, सकलम विकलम चरणम सकलम सर्वसंग विरतानाम अंगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम सकलम विकलम चरणम। कितना आसान है, सकल और विकल अर्थात कंप्लीट और पार्शियल दो प्रकार का चारित्र है। तब सकलम उसमें से जो सकल है वो किसको होता, सर्वसंग वेता नाम अनगारा नाम, जो समस्त संग से अर्थात वायु और अंतरंग परिग्रह का बुद्धि पूर्वक जिन्होंने त्याग कर दिया है ऐसे मुनि महाराज के होता है जो सकल चारित्र है। और विकलम साधारण नाम ससंगा नाम, जिसने अभी संग रख रखा है, जिसने अभी बहिरंग परिग्रह अंतरंग परिग्रह का पूरी तरह से त्याग नहीं किया है, आंशिक रूप से त्याग किया है, उसके वो आंशिक चारित्र होता है। पांच पाप है, इनसे व्यर्थ होने का नाम ही व्रत है। अपन तत्कार सूत्र पढ़ते, हिंसा नगस्ते ब्रह्म परिग्रह दो विरत व्रतम। व्रत की परिभाषा कोई पूछे तो लोगों कितनी आसान परिभाषा बताए, पांच पापों से व्यर्थ होने का नाम ही व्रत है। वास्तव में व्रत तो ये ही है, अपन तो छोटे मोटे लेकर भी अपन अपने आप को व्रति मान लिया, व्रत है काय को व्रत है, एक बार भोजन करने का ठीक है, मगर एक बार भोजन करने का व्रत तो बहुत छोटा व्रत है। पांच पापों का जीवन मार्ग जो है त्याग करो तो व्रति कहलाए। और अगर और गौर से देखा जाए तो पांच पापों के त्याग के साथ जो तीन गुण व्रत अर्थात पांच अनुव्रत तीन गुण व्रत चार शिक्षा व्रत ऐसे बारह व्रतों को अंगीकार करे तो व्रति कहलाता वास्तव में, तो तब व्रति हो पाएंगे। ऐसा व्रति यो शावक व्रत पाल स्वर्ग सोलह उपजावे तैते जय नर जन्म पाए मुनि वर शिव जावे। इससे आसान और कोई रास्ता हो सकता है क्या सकते, जब हमारे मुनि बनने की अपन शावक धर्म पढ़ रहे हैं, अपन ने पहले कह दिया था कि मुनि बनने की शक्ति नहीं थी इसलिए शावक के आचरण की चर्चा कर रहे। शावक तो वही है जो मुनि बनने की आकांक्षा लेकर के शावक आचरण का पालन करता है। सागर धर्म व्रत में कि जिसके अंदर महाव्रतों की लालसा हमेशा लगी है, जिसके अंदर महाव्रतों की लालसा नहीं है और फिर व्रतों का पालन करता तो कहती वो श्रावक नहीं, ऐसा लिखा हुआ। श्रावक तो वो ही है जिसको महाव्रतों की तो लालसा है लेकिन क्या करें शक्ति नहीं है, थोड़ा जितना होता है उतना हम कर ले रहे हैं, ऐसे अनुव्रतों को अंगीकार करता वो वास्तव व्रति है। आज के समय में तो इन व्रतों की चर्चा जो है हम कर तो रहे हैं लेकिन हमें लगता है कि अकेली नैतिक आचरण हो जाए तो नैतिकता आ जाए सदाचारी आ जाए, जो पांच अनुव्रत तो बहुत माने जैसे महाव्रत को धारण करने वाला कोई बिरला जीव होता बड़ भाग्य रत्न त्रय धरे बहुत बहुत सौभाग्य से किसी को रत्न त्रय प्राप्त होता और अनुव्रत भी जो है सुकुल श्रावक तने नहीं कहते वो है ना लाइन कौन सी आती सम्यक दर्शन होना और फिर देश व्रत होना श्रावक के व्रत होना ये भी बहुत तो ये तो दुर्लभता है। अपन तो इतना ही कर सके सदाचार कर सके तभी इन पांच की तो चर्चा अपन करेंगे। एक और इसमें बीच में जो मुझे कई बार मैं कह चुका कि पांच पाप को जीतने का थोड़ा आसान सा तरीका है, हालांकि उस तरीके में थोड़ा सा तो लगेगा कि पाप की परिणति है, पर क्या करें पहले तो द्वेष से बचना पड़ेगा। द्वेष से बचने के लिए कहीं ना कहीं तो राग करना पड़ेगा और राग भी दो प्रकार का होता है, द्वेष तो एक ही प्रकार का होता है। छोड़ने में तो अपन यही कहते हैं कि राग तो राग है जो सब प्रकार का राग है, मगर भैया राग तो फिर भी दो प्रकार का है, एक प्रशस्त है और एक अप्रशस्त है, लेकिन द्वेष तो अप्रशस्त ही है, उसमें कोई प्रशस्त और अप्रशस्त का भेद नहीं है। राग में जो प्रशस्त राग है कई बार वो हमें संसार सोनागिर के दर्शन करने जाती और सोनागिर के दर्शन करने गाड़ी में बैठी उतने में जो है थानेदार की खबर आई कि भाई जी को खबर दो कि उनके तो चोरी हो गई। तो सब सामान बता दें कि क्या क्या था तो हम चोर को पकड़ के उसने वो सब प्राप्त कर लिया। या फिर भाई जी लौट के आवे तो सब चीजें बता दें कि कौन कैसी कहाँ गई थी कौन कौन चली गई। अब भाई जी तो बैठ चुकी थी सोनागिर की गाड़ी में कहना भैया अब जो हम चीज जाने की सुख चली गई हम तो अभी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं लौटे तो नहीं और चली गई तीर्थ यात्रा पे जा रहे अब जो जाने की सुबह तो चली गई चोर आए किसी ले गए का ले गए जो हमारा होते सो हमारा को भी ले जा सकते वो हमारे पास अभी भी ऐसा इतना परिणामों में संतोष वो व्यक्ति पापों से बच सकता है। हमें कहना आपसे ये तीन दिन की जगह सोनागिर की वंदना में पांच दिन लगते हैं और खूब चित्त से पूजा पाठ और जो जैसा करना था सब मन में ये विचार तक नहीं आया कि घर में काका चलो बहुए चलो बहुए वो तो जान जाने से चलो वापस लौट के आई तो वर्मी जी ने कहा कि हम सोच चले चल रहे संगे देख लें काका चलो कहना भैया तुम तो जाओ अपने सागर पढ़ाई करो घर जाने करो पढ़ो हम जाके देखेंगे क्या क्या चीज बच्ची क्या क्या चली गई है। और घर में जाकर के देखा तो कोई भी चीज जो है कहीं से नहीं गई थी थोड़े से जो है खोदा उदा होगा सिक्के नीचे रखे तो निकाल के रखने का था सो रखे होंगे सो निकाल के बाहर पड़े थे गया कुछ भी नहीं था खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान था सब उसने खाया पिया होगा और चला गया ले नहीं गया वही उन्हीं को चिट्ठी लिखी कि भैया अपनों का छू नहीं जाओ। तो उनकी चिट्ठी में वापस लिख के भेजा कि भाई जी आपको पैसा चोखो है चोरों को भी नहीं पछे ले जाके कर देगा। देखो कितना विश्वास मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो हमने रख रखा है उसमें भी हमने ईमानदारी से कमाया है कोई नहीं ले जा सकता और सबसे बड़ी चीज ले भी जाएगा तो हमारा क्या ले जाएगा हम अपना धन ध्यान छोड़ करके उस पैसे के पीछे पाए ऐसा नहीं है। पैसा जरूरी है ये ठीक है लेकिन धन ध्यान से तो बड़ा नहीं है। जब हम मंदिर जा रहे हैं जब हम पूजा पाठ में अपना समय लगा रहे हैं उस समय तो कम से कम उस सब चीजों की आसक्ति अपन छोड़ ही सकते। पांच पाप का त्याग आप घंटे भर के लिए नहीं कर सकते कर सकते हैं जब तक सामायिक में तो लिखा हुआ है कि शावक जो है समस्त प्रकार के पापों का त्याग करके और अगर अनुवृत्ति भी है और वो सब पापों का त्याग करके बैठ जाता सामायिक में तो महावृत्ति के समान हो जाता है ऐसा दिखाई पड़ता है। इसीलिए आएगा कैसा दिखाई पड़ता जैसे किसी मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग करके किसी ने कपड़े डाल दिए हो ऐसे महावृत्ति के समान वो गृहस्थ भी हो सकता है करना चाहे तो। अपन तो बहुत जल्दी बच जाते कि जो सब कछु तो महाराज के जुम्मे है अपने जुम्मे कछु नहीं है अपन तो अज्ञान ही महाराज कछु जानते नहीं है कछु जैसे चल रहा उसे ठीक आप तो ऐसा कछु उपाय बताओ कि अच्छी बढ़िया सब चलत रहे और हम जो है आपकी सेवा भी करते हैं ठीक है हमें कोई आपत्ति नहीं आपका सब संसार भी बना रहे और हम जो है धर्मात्मा भी कहलाते रहे। हमने आपसे पिछली बार भी कहा था कि ऐसा कई बार मन होता है लेकिन दोनों चीजें एक साथ नहीं होती भैया धर्मात्मा बनने के लिए तो उसका उपाय ही है कि हमें उतनी उतनी संसार में रहते हुए भी उससे विरक्ति होगी पापों से हमारी विरक्ति होनी चाहिए। जैसे आपको बने वैसे करें आप हमारा कोई उसमें आग्रह भी नहीं है कि आप ऐसे ही ऐसे ही छोड़े हमारे पास आके नियम नहीं ले गए हमने तो अभी तक जो है लिए नहीं किसी ने आके ले लिया हो तो ले लिया हो हमारे पास तो है ही नहीं कि हम दे सके। नियम लिए जाते हैं दिए नहीं जाते इन सब चीजों का नियम जो है वो आप स्वयं अपने आप अपनी बुद्धि से विचार करके कि कितने कम में हमारा जीवन चल सकता है कितने कम में चल पावे उतने कम में चलाएं क्योंकि जितने अधिक हम बढ़ाते जाएंगे उतना हमसे पाप होगा और उतना संसार होगा। और सबसे बड़ी चीज अपने आत्मा के विकास के लिए समय तक नहीं मिलेगा इतने व्यस्त हो गए हैं हम कि हमें पांच मिनट दस मिनट घंटे भर जैसे तो लिखा है कि पुरुषार्थ करे सो तीन करे शावक धर्म पुरुषार्थ अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ तीनों पुरुषार्थ है तो डिवाइड कर लो भैया आने वाला पॉल्यूशन है उसमें कैसे समय निकल आता है अभी देखना सब समय निकलेगा लोगों को दस दिन तो खूब तेजी से इतने मैंने ऐसे धर्मात्मा बन जाएंगे कि पूछो मत सुबह से शाम तक में लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है मुझे आश्चर्य ये होता है उसके बाद भी तो वही व्यक्ति है जैसे दस दिन किए थे उन दस दिन का अगर आनंद आया होता तो ग्यारहवें दिन जरूर करते। अब तो ये कहना पड़े उन दस दिनों का आनंद नहीं आया इसलिए ग्यारहवें दिन ऐसा लगता था कि कब हमारे पूरे हो जाते तो अच्छा रहता। हमें उस चीज का आनंद आना चाहिए जो उसको क्लेश का कारण नहीं मानना चाहिए कि जितने भी व्रत नियम संयम है वे क्लेश के कारण अगर हमारे भीतर भीतर ये बात है हमें उसमें आनंद नहीं आता है तो फिर तो हमने अभी मोक्ष मार्ग को समझा ही नहीं है। हमें समझ करके और इन सब चीजों में भी आनंद लेना चाहिए जितना जिससे बने उतना त्याग अपने जीवन में अंगीकार करके व्रतों को आंशिक रूप से या कि पूर्ण रूप से जैसे भी अंगीकार करना हो वैसे अंगीकार करके अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। ऐसी भावना के साथ में जब हम सब लोग जो है इन पापों से बचने की कोशिश करेंगे।
बोले आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज
तीर्थ संकरों के पंच कल्याण मना गए व समोसरण की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य भव्य जीवों को प्राप्त होता रहा है। काल चक्र के प्रभाव से वर्तमान समय में हिंसा, अराजकता, अन्याय, भ्रष्टाचार जैसा दूषित वातावरण अंधकार रूप में व्याप्त है। किंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु रूप में ऐसे तेज प्रकाश पुंज का सानिध्य प्राप्त है। ऐसे गुरु दर्शन मात्र से मन का कालुष मिट जाए, ऐसी गुरु वाणी जैसे समुद्रण में दिव्य ध्वनि, ऐसे गुरु परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम शिष्य श्री क्षमा सागर जी महाराज के चरणों में सत वंदन। आचार्य श्री जी के वचनों की सीढ़ी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें ब्रह्मचारी श्री अजित वीर श्री दिगंबर जैन पंच बाल गति मंदिर विद्यासागर नगर बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने एबी रोड इंदौर 10 दूरभाष कोड 0731 दूरभाष संख्या 2571851।
पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, कुरीतियों का अब तो हमें अंत चाहिए। तंग घना अज्ञानता का छारना है गर, आज सागर जैसा संत चाहिए।